एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो महज एक आत्मकथा नहीं है, ये अमेरिकी इतिहास और कह सकते हैं कि मानवीय आत्मा की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है उसका एक बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज है।
हाँ।
नाम है नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, An American Slave Written by Himself. और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसे खुद फ्रेडरिक डगलस ने लिखा था।
बिल्कुल, फ्रेडरिक डगलस, जिनका जन्म अंदाजन 1818 में और मृत्यु 1895 में हुई, वो एक असाधारण व्यक्ति थे। मतलब उनका जीवन शुरू हुआ दास्ता के घोर अंधकार में, लेकिन वो अपनी हिम्मत और अपनी बुद्धि के बल पर अमेरिका के सबसे प्रभावशाली उन्मूलनवादियों में से एक बने। उन्मूलनवादी यानी वो लोग जो दास्ता को पूरी तरह खत्म करने के लिए आवाज उठा रहे थे, आंदोलन चला रहे थे।
हाँ, एबोलिशनिस्ट जिन्हें कहते हैं।
हाँ, एबोलिशनिस्ट। और वो एक जबरदस्त वक्ता बने, लेखक बने और समाज सुधारक के रूप में उभरे।
ये सोचना भी कमाल का है कि उन्होंने ये किताब 1845 में प्रकाशित की, दास्ता से भागने के महज 7 साल बाद।
हाँ,
उस समय तो भगोड़ा दास कानून यानी फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट लागू था, उनकी जान को सीधा खतरा था। मतलब ये वो कानून था जिसके तहत उत्तर के आज़ाद राज्यों को भी अगर कोई भागा हुआ गुलाम मिलता तो उसे पकड़कर दक्षिण में उसके मालिक को लौटाना पड़ता था।
बिल्कुल, तो अपनी असली पहचान और जगह बताकर तो वो खुद को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे थे।
हाँ,
और यही उनके साहस को दिखाता है। उन्होंने ये जोखिम उठाया क्योंकि ये कहानी सुनाना जरूरी था। देखिए, इस किताब ने अमेरिका की अंतरात्मा पर, कह सकते हैं, गहरा असर डाला। इसने दास्ता के बारे में जो झूठे रोमानी से मिथक फैले हुए थे ना, उनको तार तार कर दिया और उसकी असली क्रूर, अमानवीय और नैतिक रूप से भ्रष्ट तस्वीर पेश की।
डगलस ने दिखाया कि ये व्यवस्था न केवल गुलामों को तोड़ती थी बल्कि मालिकों की इंसानियत को भी खत्म कर देती थी।
और साथ ही इसने उस वक्त की जो नस्लवादी धारणाएं थी उनको भी सीधी चुनौती दी। ये साबित किया कि एक अश्वेत व्यक्ति न केवल बौद्धिक रूप से किसी भी श्वेत व्यक्ति के बराबर है, बल्कि वो अपने अनुभवों को ऐसी भाषा और ऐसी शक्ति से व्यक्त कर सकता है जो पूरे राष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर दे।
बिल्कुल सही।
तो चलिए फिर डगलस के जीवन के इस यात्रा को उन्हीं के शब्दों के आईने में देखते हैं, उनकी किताब के जरिए।
हाँ, शुरू करते हैं उनके शुरुआती सालों से। डगलस का जन्म हुआ फ्रेडरिक ऑगस्टस वॉशिंगटन बेली के नाम से, मैरीलैंड में, अंदाजन 1818 में।
अंदाजन? हाँ, अंदाजन। उन्हें अपनी जन्म की सही तारीख तक नहीं पता थी। और देखिए, ये दास्ता का पहला और सबसे बुनियादी अन्याय था, व्यक्ति से उसकी पहचान ही छीन लेना, उसे बस एक संपत्ति की तरह देखना, कोई इंसान ही ना समझना।
और बचपन में ही उन्हें उनकी माँ हैरियट बेली से अलग कर दिया गया था।
हाँ, ये उस वक्त गुलाम बच्चों के साथ अक्सर किया जाता था ताकि माँ और बच्चे के बीच जो एक स्वाभाविक बंधन होता है वो मजबूत ना हो पाए, नियंत्रण रखने का एक और तरीका।
सोचिए, उनकी माँ रात में करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर उनसे मिलने आती थी, और वो भी सिर्फ कुछ ही बार ऐसा हो पाया।
हाँ, और जब डगलस करीब 7 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई। डगलस को ये भी शक था, मतलब वो पक्का नहीं कह सकते थे, पर उन्हें शक था कि उनके जो पहले मालिक थे कैप्टन एंथनी, शायद वही उनके पिता थे।
अच्छा।
हाँ, और ये संभावना दास्ता में महिलाओं के साथ होने वाले भयानक यौन शोषण की तरफ इशारा करती है, जहां मालिक अपनी संपत्ति, समझी जाने वाली महिलाओं पर किसी भी तरह का अधिकार समझते थे।
कितनी भयावह बात है। उन्होंने बचपन में ऐसी क्रूरता देखी जिसने उनके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक घटना जिसका जिक्र वो खास तौर पर करते हैं वो है अपनी चाची हेस्टर को कैप्टन एंथनी द्वारा बेरहमी से कोड़े खाते देखना।
हाँ, उस वक्त वो बच्चे थे और एक अलमारी में छिपकर ये सब देखने को मजबूर थे। उन्होंने इसे नरक का खून से सना द्वार कहा है। वहीं उन्हें पहली बार मालिक की असीम मनमानी और क्रूर शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि दास्ता असल में है क्या।
ये सिर्फ शारीरिक गुलामी नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक था जो इंसान की गरिमा को कुचल देता था। और इसी दौरान उन्होंने गुलामों द्वारा गाए जाने वाले जो आध्यात्मिक गीत थे, स्पिरिचुअल्स, उनका असली मतलब भी समझा।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, बाहर वालों को या मालिकों को वो शायद साधारण या खुशी के गीत लगते होंगे, लेकिन डगलस के लिए और दूसरे गुलामों के लिए वो गहरी उदासी, पीड़ा और आज़ादी की प्रार्थना थी। वो आत्मा का क्रंदन थे। अक्सर उनमें बेहतर जीवन की आस या भाग निकलने के गुप्त संदेश भी छुपे होते थे।
वाह, अच्छा तो फिर उनकी जिंदगी में मोड़ कब आया? शिक्षा की तरफ रुझान कैसे हुआ?
हाँ, तो लगभग 8 साल की उम्र में उन्हें बाल्टीमोर शहर भेजा गया ह्यू और सोफिया ऑल्ट के घर काम करने के लिए। ये उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ था। शहर का माहौल जो था वो ग्रामीण बागानों की बर्बरता से कुछ अलग था। और सोफिया ऑल्ट, जिन्हें पहले कभी कोई गुलाम रखने का अनुभव नहीं था, वो शुरुआत में डगलस के प्रति काफी दयालु थीं।
हाँ, और उन्होंने तो डगलस को वर्णमाला सिखानी भी शुरू कर दी थी। ये डगलस के लिए जैसे एक उम्मीद की किरण थी।
बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही उनके पति फ्यू ऑल्ट ने ये देखा, वो गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने अपनी पत्नी को सख्ती से मना कर दिया, कहा कि पढ़ना एक गुलाम को बिगाड़ देगा, उसे असंतुष्ट बना देगा और गुलाम होने के अयोग्य बना देगा।
ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला क्षण रहा होगा उनके लिए।
हाँ बिल्कुल, और पता है ह्यू ऑल्ट के उन गुस्से भरे शब्दों में ही डगलस को अनजाने में एक गहरा राज पता चल गया।
क्या?
उन्होंने फौरन समझ लिया कि अज्ञानता ही वो हथियार है जिसके जरिए गुलामों को नियंत्रण में रखा जाता है। डगलस ने बाद में लिखा भी है, मैं समझ गया कि श्वेत व्यक्ति की अश्वेत व्यक्ति को गुलाम बनाने की शक्ति क्या थी। उसी क्षण से मैं दासता से स्वतंत्रता का मार्ग समझ गया।
अच्छा, तो साक्षरता ही वो मार्ग थी।
हाँ, साक्षरता।
इसके बाद तो पढ़ना लिखना सीखना उनका जैसे जुनून बन गया होगा। बन गया। जब औपचारिक तरीके से सीखने का रास्ता बंद हो गया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से दूसरे रास्ते खोजे। वो क्या करते थे कि आस पड़ोस के जो गरीब श्वेत लड़के थे, उन्हें अपनी रोटी का थोड़ा हिस्सा दे देते थे और बदले में उनसे पढ़ना सीखते थे।
वाह, क्या तरीका निकाला।
हाँ, और शिपयार्ड में वो लकड़ी के टुकड़ों पर जो अक्षर लिखे होते थे, उन्हें देखकर अभ्यास करते थे। फिर लगभग 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत से 50 सेंट से एक किताब खरीदी। नाम था द कोलंबियन ओरेटर।
द कोलंबियन ओरेटर, इसमें क्या खास था?
ये उस समय स्कूलों में चलने वाली एक लोकप्रिय किताब थी।
हाँ,
इसमें स्वतंत्रता, मानवाधिकार, साहस और अन्याय के खिलाफ बोलने पर जोर देने वाले कई भाषण और संवाद थे। इस किताब ने उन्हें अपने अंदर जो अन्याय वो महसूस कर रहे थे, उसके खिलाफ तर्क करने के लिए शब्द दिए, विचार दिए।
लेकिन ये ज्ञान, जैसा उन्होंने खुद लिखा है, एक दोधारी तलवार जैसा साबित हुआ उनके लिए।
हाँ बिल्कुल, इसमें उनके दिमाग को तो आजाद कर दिया, पर साथ ही उनकी आत्मा पर एक बोझ भी डाल दिया। अब वो अपनी दयनीय स्थिति को और भी ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते थे। उन्होंने लिखा, ये एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप था।
मतलब
ये कि इसने मुझे मेरी दशा तो दिखा दी, पर उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। ये जानना कि आप कितने बंधे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द बन गया उनके लिए।
समझ सकता हूँ। अच्छा, फिर किताब में वो अपनी चरम उपलब्धियों या विरासत के बारे में क्या बताते हैं? मतलब एक गुलाम से एक इंसान बनने तक का सफर।
हाँ, तो कुछ समय बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें वापस ग्रामीण इलाके में भेज दिया गया, और वहां उन्हें एडवर्ड कोवी नाम के एक आदमी के पास काम करने भेजा गया। ये आदमी स्लेव ब्रेकर के तौर पर कुख्यात था।
स्लेव ब्रेकर मतलब?
सबसे अंधकारमय दौर था। कोवी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग तोड़ ही दिया था। करीब 6 महीने तक उन्हें लगातार पीटा गया, भूखा रखा गया और उनसे हद से ज्यादा काम लिया गया।
डगलस ने लिखा भी है कि उस दौरान वे शरीर, आत्मा और बुद्धि तीनों से टूट चुके थे।
लेकिन फिर एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, अगस्त महीने की एक बहुत गर्मी वाली दोपहर थी।
जब कोवी ने फिर से उन्हें पीटने की कोशिश की, तो डगलस ने अचानक पलटवार कर दिया।
पलटवार?
हाँ, ये कोई पहले से सोची समझी योजना नहीं थी। ये बरसों का जो दमन था, अपमान था, उसके बाद अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया एक अचानक उठा कदम था, एक प्रतिरोध था। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक संघर्ष चला। डगलस बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
2 घंटे?
हाँ, आखिरकार थका हुआ और शायद कुछ डरा हुआ कोवी पीछे हट गया।
ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई।
बिल्कुल, डगलस ने लिखा, मिस्टर कोवी के साथ हुई ये लड़ाई मेरे गुलाम जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसने मेरे अंदर मेरे अपने पौरुष की भावना को फिर से जगा दिया। मैंने संकल्प लिया कि भले ही मैं कागज पर गुलाम रहूं, लेकिन हकीकत में अब मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। और सचमुच कोवी ने उसके बाद कभी उन पर हाथ नहीं उठाया। इस घटना ने डगलस के अंदर आजादी की जो चिंगारी थी उसे फिर से भड़का दिया।
अच्छा, फिर
कुछ समय बाद उन्होंने कुछ साथी गुलामों के साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन किसी ने धोखा दे दिया। योजना नाकाम हो गई और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया।
ओह, तो फिर क्या हुआ? उन्हें और सजा मिली?
सौभाग्य से उन्हें सुदूर दक्षिण में, जहां हालात और बुरे होते, वहां बेचने के बजाय वापस बाल्टीमोर भेज दिया गया। वहां उन्हें एक शिपयार्ड में कॉलकर का काम सीखने का मौका मिला।
कॉलकर, ये क्या होता है?
ये जहाजों के तख्तों के बीच जो दरारें होती हैं उन्हें भरने का एक कुशल काम होता है। तो वह अच्छा पैसा कमाने लगे, लेकिन उन्हें अपनी सारी कमाई अपने मालिक ह्यू ऑल्ड को सौंपनी पड़ती थी।
अपनी मेहनत की कमाई किसी और को देना, ये तो बहुत चुपता होगा।
बहुत ज्यादा, और वो भी तब जब वो स्वतंत्रता के इतने करीब महसूस कर रहे थे। इसने उनके लिए गुलामी को और भी ज्यादा असहनीय बना दिया। आखिरकार 3 सितंबर 1838 को 20 साल की उम्र में वो भागने में कामयाब हो गए।
आखिरकार कैसे?
उन्होंने एक स्वतंत्र अश्वेत नाविक से उसके पहचान पत्र उधार लिए, नाविकों वाले कपड़े पहने और ट्रेन और स्टीमबोट के जरिए उत्तर में न्यूयॉर्क शहर पहुंच गए, जो कि एक स्वतंत्र राज्य था।
ये तो बड़ा जोखिम भरा रहा होगा।
हाँ, बहुत। और अपनी किताब में उन्होंने जानबूझकर भागने के तरीके का पूरा ब्यौरा नहीं दिया।
क्यों?
ताकि दूसरे गुलामों के भागने के रास्ते खुले रहे और उनकी मदद करने वालों की पहचान भी सुरक्षित रहे।
अच्छा, ये भी सोचा उन्होंने। तो नैरेटिव किताब कहाँ खत्म होती है?
किताब उनके उत्तर पहुंचने के कुछ समय बाद की घटनाओं पर आकर समाप्त होती है। न्यूयॉर्क में वो लगातार पकड़े जाने के डर में जी रहे थे। वहां उन्होंने अपनी मंगेतर अन्ना मरे को बुलाया।
अन्ना मरे?
हाँ, अन्ना बाल्टीमोर की एक स्वतंत्र अश्वेत महिला थी। उन्होंने न केवल भावनात्मक रूप से डगलस का साथ दिया था, बल्कि भागने के लिए उन्हें आर्थिक मदद भी की थी।
अच्छा।
उन्होंने न्यूयॉर्क में शादी की और फिर और ज्यादा सुरक्षा के लिए न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स चले गए। वहीं उन्होंने अपना उपनाम डगलस चुना। ये नाम वॉल्टर स्कॉट की एक कविता द लेडी ऑफ द लेक से प्रेरित था। उत्तर में आकर उन्हें कैसा लगा?
वो वहां स्वतंत्र अश्वेत लोगों की आत्मनिर्भरता और उनका गरिमापूर्ण जीवन देखकर बहुत प्रभावित हुए, बल्कि आश्चर्यचकित भी हुए। उन्हें पहली बार लगा कि आजादी का मतलब क्या होता है।
और पुस्तक का अंत, पुस्तक का समापन होता है 1841 में नांटिकेट द्वीप पर हुए एंटी स्लेवरी कन्वेंशन, यानी दासता विरोधी सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण के जिक्र से।
उन्होंने भाषण दिया वहां?
हाँ, उन्हें वह अचानक बोलने के लिए कहा गया। वो शुरू में झिझक रहे थे, घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, उनकी वाक्पटुता, उनके शब्दों का दर्द और उनके अनुभवों की सच्चाई ने वहां मौजूद सभी लोगों को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया।
वाह।
उस सभा में प्रसिद्ध उन्मूलनवादी नेता विलियम लॉयड गैरिसन भी मौजूद थे। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत डगलस को मैसाचुसेट्स एंटी स्लेवरी सोसाइटी के लिए एक वक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया।
तो यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई।
बिल्कुल, यहीं से एक भगोड़े गुलाम की जिंदगी खत्म हुई और दुनिया के मंच पर एक असाधारण वक्ता और उन्मूलनवादी नेता के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने न केवल शारीरिक स्वतंत्रता पाई, बल्कि अपने जीवन का एक उद्देश्य भी पाया। और ये किताब नैरेटिव उस विरासत का पहला और शायद सबसे शक्तिशाली दस्तावेज है।
वाकई, उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम उनके मूल दर्शन या मूल्यों की बात करें तो क्या चीजें उभर कर आती हैं?
देखिए, डगलस का जो जीवन दर्शन था वो सीधे तौर पर उनके अनुभवों की भट्टी में तपा था। दास्ता की क्रूरता और फिर आत्मशिक्षा की शक्ति, इन दोनों ने उनके विचारों को आकार दिया। उनके मूल में कुछ गहरे सिद्धांत थे।
जैसे कि
आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा में उनका अटूट विश्वास। वो मानते थे कि स्वतंत्रता और सम्मान हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मालिक या सरकार की मेहरबानी से मिलती है।
हाँ, वो एडवर्ड कोवी के साथ जो उनकी लड़ाई हुई वो इसी विश्वास का प्रतीक लगती है कि अपनी गरिमा की रक्षा खुद करनी पड़ती है, उसे स्थापित करना पड़ता है।
बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था सत्य और ज्ञान की शक्ति में विश्वास। उनके लिए साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं था, ये मुक्ति का रास्ता था। उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि लोगों को जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखना ही दास्ता की व्यवस्था का आधार था। उनका मानना था कि सत्य अगर एक बार जान लिया जाए तो वो एक ऐसी शक्ति है जिसे हराया नहीं जा सकता। अपनी कहानी बताकर वो दास्ता के झूठ को बेनकाब कर रहे थे और लोगों की अंतरात्मा को जगा रहे थे।
और वो ये भी गहराई से समझते थे कि असीमित शक्ति इंसान को कैसे भ्रष्ट करती है। जैसे सोफिया ऑल्ट का उदाहरण आपने दिया था, शुरू में दयालु थी लेकिन गुलाम रखने की शक्ति मिलते ही धीरे धीरे क्रूर बन गई।
हाँ, ये दिखाता है कि वो व्यवस्था ही जहरीली थी। वो सिर्फ गुलामों के लिए नहीं बल्कि मालिकों के लिए भी नैतिक रूप से विनाशकारी थी। और हाँ, एक और चीज, उनकी पाखंडी ईसाई धर्म की तीखी आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ईसा मसीह की शिक्षाओं वाले शुद्ध, शांतिप्रिय और न्यायपूर्ण ईसाई धर्म और अमेरिकी दक्षिण में प्रचलित दास धारक ईसाई धर्म के बीच साफ अंतर करते थे।
अच्छा।
वो उन मालिकों के पाखंड पर कड़ा प्रहार करते थे जो रविवार को चर्च में प्रार्थना करते थे और हफ्ते के बाकी दिन अपने गुलामों पर कोड़े बरसाते थे।
तो फिर उनकी मूल प्रेरणा क्या थी? क्या ये सिर्फ अपनी आजादी थी या कुछ और भी?
शुरू में तो हाँ, निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता की एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत तीव्र प्यास थी। न केवल शारीरिक बंधनों से मुक्ति बल्कि विचारों की और आत्मा की आजादी भी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें ज्ञान मिला और एक सार्वजनिक मंच मिला, उनकी प्रेरणा का दायरा बड़ा होता गया। उन्होंने अपनी नैरेटिव मुख्य रूप से दो बड़े कारणों से लिखी। पहला, गवाही देना, उन लाखों बेजुबान गुलामों की तरफ से सच बोलना जिनकी कहानियां कभी सुनी नहीं जाती। और दूसरा, उन्मूलनवाद का समर्थन करना, दास्ता विरोधी आंदोलन को अपने प्रत्यक्ष अनुभव का एक अकाट्य, जिसे झुटलाया ना जा सके, ऐसा प्रमाण देकर उसे ताकत देना।
समझ गया। अच्छा, अगर हम उनकी जिंदगी के तीन सबसे निर्णायक मोड़ों की बात करें जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
हाँ, ये चुनना मुश्किल है क्योंकि उनकी जिंदगी में कई अहम पल आए, लेकिन अगर तीन सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी पलों की बात करें तो पहला शायद वही होगा, ह्यू ऑल्ट का उन्हें पढ़ने से रोकना।
हाँ, ये अजीब लगता है कि मना ही एक निर्णायक मोड़ कैसे बनी।
देखिए, जब ह्यू ऑल्ट ने अपनी पत्नी सोफिया को डगलस को अक्षर ज्ञान कराते देखा, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि पढ़ने लिखने से गुलाम असंतुष्ट, नाखुश और नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मनाही नहीं थी, ये डगलस के लिए एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन था, एक आंखें खोलने वाला पल।
तो मालिक ने अनजाने में ही उन्हें आजादी का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने उसी वक्त समझ लिया कि गुलामों को अज्ञानी बनाए रखना ही उन पर नियंत्रण रखने का मुख्य हथियार है।
बिल्कुल। इस घटना ने उनके अंदर सीखने की इच्छा को एक जुनून, एक मिशन में बदल दिया। ये उनके बौद्धिक प्रतिरोध की शुरुआत थी जिसने उन्हें आत्म शिक्षा के उस रास्ते पर डाला जिसे उन्होंने सही पहचाना, दास्ता से स्वतंत्रता का मार्ग।
और दूसरा मोड़?
दूसरा निर्णायक मोड़ निश्चित रूप से एडवर्ड कोवी के साथ हुई वो शारीरिक लड़ाई थी। जैसा हमने पहले बात की, कोवी एक स्लेव ब्रेकर था जिसने 6 महीने तक डगलस को शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग तोड़ ही दिया था।
हाँ।
लेकिन जब डगलस ने पलटवार किया और 2 घंटे तक संघर्ष करके हार नहीं मानी, तो ये सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं थी।
सही कहा।
ये सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक इंसान द्वारा अपनी इंसानियत, अपने आत्मसम्मान का दावा था उस व्यवस्था के खिलाफ जो उसे सिर्फ एक वस्तु समझती थी।
हाँ।
डगलस ने कहा कि उस क्षण एक गुलाम को एक आदमी बनाया गया, इसने उनकी टूटी हुई आत्मा को फिर से जीवित कर दिया और ये साबित कर दिया कि प्रतिरोध संभव है, कि उनकी आत्मा को पूरी तरह कुचला नहीं जा सकता। बिल्कुल। और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ था द कोलंबियन ओरेटर किताब को पढ़ना।
अच्छा।
लगभग 12 साल की उम्र में जब उन्होंने 50 सेंट बचाकर ये किताब खरीदी, तो ये सिर्फ पढ़ना सीखने से आगे की बात थी। इस किताब में दिए गए भाषणों और संवादों ने जो स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अन्याय के विरोध जैसे विषयों पर थे, डगलस को गहराई से प्रभावित किया।
इसने उन्हें सिर्फ शब्द नहीं दिए बल्कि उनकी अपनी दबी हुई भावनाओं और अन्याय के एहसास को व्यक्त करने के लिए एक वैचारिक ढांचा दिया। इसने उन्हें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों और जुल्म के खिलाफ तर्क करना सिखाया।
हाँ, इसने उनकी दास्ता के प्रति नफरत को एक भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे ले जाकर एक सुविचारित राजनीतिक और दार्शनिक विश्वास में बदल दिया। हालांकि इससे उन्हें दुख भी हुआ, जैसा उन्होंने कहा, वरदान के बजाय अभिशाप, क्योंकि अब वो अपनी गुलामी को और ज्यादा गहराई से समझते थे। लेकिन यही ज्ञान उन्हें भविष्य में एक विचारक और उन्मूलनवादी आंदोलन के ताकतवर नेता के रूप में ढालने के लिए जरूरी था।
तो डगलस की ये कहानी, जैसा कि उन्होंने अपनी नैरेटिव में बताई है, हमें आज क्या सिखाती है? उनकी मुश्किलें, उनके संघर्ष और उनकी जीतें, ये किन सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों से जुड़ती हैं?
बिल्कुल, कई सारी चीजें। ये कहानी कई गहरे मानवीय सबक समेटे हुए है। इसमें ज्ञान की कभी ना बुझने वाली प्यास है ना? दमन के खिलाफ मानवीय गरिमा की लड़ाई है, अन्याय सहने का जो मनोवैज्ञानिक बोझ होता है वो है, और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने का जज्बा, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो साफ दिखता है।
हाँ।
हम ये भी देखते हैं कि कैसे शक्ति भ्रष्ट करती है और कैसे बड़ी विपत्ति में भी जीवन का उद्देश्य खोजा जा सकता है।
उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वे किसी व्यक्ति की नियति को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती। मतलब आत्मशिक्षा, दृढ़ संकल्प और आंतरिक शक्ति के बल पर इंसान बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है।
हाँ, डगलस ने साबित किया कि मन की आजादी शारीरिक आजादी से पहले आ सकती है और उसका मार्ग प्रशस्त कर सकती है। विरोध कई अलग अलग रूप ले सकता है। ये चुपके से पढ़ना सीखना हो सकता है, जैसे उन्होंने किया। ये शारीरिक टकराव हो सकता है, जैसे कोवी के साथ हुआ। या फिर ये अपनी कहानी को दुनिया के सामने सच सच बताने का नैतिक साहस हो सकता है, जैसा उन्होंने किताब लिखकर किया।
सही कहा।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपनी इंसानियत और अपने आत्ममूल्य की भावना को कैसे बनाए रखते हैं, भले ही बाहरी ताकतें उसे कुचलने की कितनी भी कोशिश करें।
तो फ्रेडरिक डगलस के जीवन और उनके इस शक्तिशाली वृतांत पर हुई इस गहन चर्चा से अगर हम तीन मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी?
तीन मुख्य बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे पहली बात जो दिल को छूती है वो ये है कि दास्ता का शायद सबसे गहरा और क्रूर जख्म परिवारों का टूटना और रिश्तों का अमानवीयकरण था।
हाँ।
दादियुस का अपनी माँ से बचपन में ही अलग हो जाना, उनकी वो धुंधली सी यादें और अपनी दादी का वो दुखद अंत, जिन्हें जीवन भर सेवा करने के बाद बुढ़ापे में जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये अनुभव उस भावनात्मक तबाही को दर्शाते हैं जो ये व्यवस्था लाती थी। मानवीय रिश्तों का मूल्य और उन्हें तोड़ने की क्रूरता, ये एक ऐसा शक्तिशाली भावनात्मक सबक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। दूसरी बात जो दिमाग में बैठती है वो है, साक्षरता ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। शिक्षा को जानबूझकर रोकना दमन का एक सोचा समझा और शक्तिशाली हथियार था।
हाँ।
इसके विपरीत ज्ञान प्राप्त करना उस दमनकारी ढांचे को चुनौती देने और अंततः तोड़ने की कुंजी है। यू ऑल्ट की वो अनजाने में दी गई सीख कि पढ़ने लिखने से गुलाम अयोग्य हो जाएगा, इस बौद्धिक सत्य को उजागर करती है। शिक्षा सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, ये चेतना जगाने और स्वतंत्रता का मार्ग खोलने का एक जरिया है।
एकदम सही। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। और तीसरी एक ऐसी बात जो हम सबके लिए है, किसी भी तरह के दमन या अन्याय के सामने अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिरोध आवश्यक है, चाहे वो प्रतिरोध किसी भी रूप में क्यों ना हो। गरिमा कोई ऐसी बाहरी चीज नहीं है जिसे कोई छीन सके या दे सके, ये एक आंतरिक गुण है जिसे व्यक्ति को स्वयं स्थापित करना होता है और उसकी रक्षा करनी होती है। जैसा डगलस ने कोवी के साथ अपनी लड़ाई में किया, उन्होंने ये साबित किया कि जब आपकी इंसानियत पर हमला हो तो उसका बचाव करना ही मनुष्य होने का प्रमाण है। ये सबक हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो किसी भी तरह के अन्याय का सामना कर रहा है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।